पृष्ठ संख्या 261, अध्याय 16। अध्याय शीर्षक है धार्मिक ज्ञान की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस नॉलेज। इसके अंतर्गत क है धार्मिक अनुभूति एवं रहस्यवाद, रिलीजियस एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसिज्म। अब शीर्षक है धार्मिक अनुभूति। धर्म मानव चेतना में यद्यपि तीन रूपों में प्रकट होता है, भावना, बुद्धि और संकल्प, परंतु मूल रूप से धर्म भावना पर ही आधारित है। प्रगाढ़ भावना से ओतप्रोत धर्म धार्मिक अनुभूति के रूप में प्रकट होता है। धर्म की सत्यता का प्रश्न जहाँ उठाया जाता है, वहाँ धार्मिक व्यक्ति केवल अपनी अनुभूतियों का ही सहारा लेता है। वही धार्मिक सत्यता का प्राण है। जिस प्रकार हमें सामान्य जीवन की अनेक अनुभूतियाँ होती हैं, उसी प्रकार धार्मिक व्यक्ति के लिए धर्म के विषय में भी अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें उसको संदेह नहीं रहता। वह इस अनुभूति को जीवन की समस्त वस्तुओं और घटनाओं में स्पष्टतः प्राप्त करता है। इसलिए वह धर्म की बौद्धिक, भावात्मक और संकल्पनात्मक व्याख्या करता है। धार्मिक व्यक्ति की अनुभूति जीवन और जगत में सर्वत्र व्याप्त रहती है। ऐसी धार्मिक अनुभूति को विभिन्न धर्म दार्शनिकों ने विभिन्न रूपों में ग्रहण किया है। धर्म और धार्मिक अनुभूति को अनेक धर्म दार्शनिकों ने विभिन्न रूपों में ग्रहण किया है। मूल रूप से ईश्वर या चरम सत्ता के साथ आत्मसात होने की अनुभूति को ही धार्मिक अनुभूति कहते हैं। धर्म और धार्मिक अनुभूति को अनेक धर्म दार्शनिकों ने विभिन्न रूपों में ग्रहण किया है। धर्म और धार्मिक अनुभूति पर अनेक धर्म दार्शनिकों ने अपनी कृतियों में प्रकाश डाला है। इंज, अंडरहिल, जोन्स, बर्गसान तथा जेम्स के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ईश्वरीय अनुभूति को रुडॉल्फ ऑटो ने विशेष रूप से चित्रित किया है। इनके अनुसार यह अनुभूति अनूठी होती है। जॉन बेली तथा एच रिचर्ड नीबुर ने भी श्रुति के आधार पर इसको प्रकट किया है। ऑटो ने धार्मिक चेतना की व्याख्या करते हुए असाधारण एवं पूर्ण कहा है, जिसमें बौद्धिकता का नाम नहीं है। ऑटो के अनुसार धार्मिक अनुभूति को नूमिनस कहा जाता है। इनके अनुसार इसकी कई विशेषताएं हैं। यह अनूठी और अद्भुत है। यह अबौद्धिक है। यह अवर्णनीय है तथा सभी मूल्यों से परे असीम सत्ता है। इस धार्मिक अनुभूति को स्लायर मारवार ने निर्भरता की भावना पर आधारित माना है। टेम्पल के अनुसार धार्मिक अनुभूति जीवन और जगत के संदर्भ में संपूर्ण अनुभूति पर आधारित होती है। धार्मिक व्यक्ति समस्त विश्व में ईश्वरीय सत्ता को ही देखता है। निबुर ने भी धार्मिक अनुभूति को संपूर्ण विश्व में व्याप्त पाया है। पृष्ठ संख्या 262। इनके अनुसार जगत में ईश्वर और ईश्वर में जगत को पाना ही धार्मिक अनुभूति का मूल है। इस धार्मिक अनुभूति की विभिन्न विशेषताएं बताई जा सकती हैं। पहला है, धार्मिक अनुभूति व्यापक होती है। सामान्य रूप से धार्मिक अनुभूति संपूर्ण जगत में ईश्वर को ही प्रकट करती है। व्यक्तिगत स्तर पर रहस्यवादात्मक स्थिति में रहती है। दूसरा है, धार्मिक अनुभूति में मानव चेतना के तीनों पक्ष विचार, भावना, संकल्प रहते हैं, परंतु भावना प्रधान रहती है। तीसरा है, धार्मिक अनुभूति में वस्तुनिष्ठता होती है, इसीलिए यह स्वयं सिद्ध है। चौथा है, धार्मिक अनुभूति प्रगाढ़ता के स्तर पर रहस्यात्मक होती है, इसीलिए यह अवर्णनीय होती है। इस अवस्था का नाम रहस्यवाद और इस स्थिति को प्राप्त होने वाला रहस्यवादी कहा जाता है। अब अगला शीर्षक है, धार्मिक अनुभूति स्वरूप एवं विषय, भारतीय तथा पाश्चात्य, रिलीजियस एक्सपीरियंस, नेचर एंड ऑब्जेक्ट, इंडियन एंड वेस्टर्न। धार्मिक अनुभूति के विषय में जो कुछ ऊपर कहा गया है, उसके संदर्भ में यदि धार्मिक अनुभूति के स्वरूप के विषय में सारांश में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि धार्मिक अनुभूति वह अनुभूति है जब कोई व्यक्ति यह विश्वास करता है कि उसने ईश्वर या दैवी सत्ता या अन्य किसी धार्मिक तत्व, आकृति या स्वरूप का अनुभव किया है। यह धार्मिक अनुभूति सामान्य जीवन की अनुभूतियों से भिन्न प्रकार की होती है। इस धार्मिक अनुभूति का चमत्कारिक घटनाओं या पैरानॉर्मल इवेंट्स से भेद है, जैसे कुर्सी का फर्श पर घूमना, बिना किसी प्रत्यक्ष सहायता के किसी घटना का घटित होना आदि। धार्मिक अनुभूति का न तो विषय है और न ही उसका स्वरूप ही है। यद्यपि दोनों का लक्षण असाधारण स्वरूप का होता है, किंतु धार्मिक अनुभूति की असाधारणता चमत्कारिक घटना से भिन्न स्वरूप की होती है। शीर्षक है, कब और कहाँ धार्मिक अनुभूतियाँ घटित होती हैं। यदि यह प्रश्न किया जाए कि धार्मिक अनुभूतियाँ कब और कहाँ घटित होती हैं या अस्तित्व में आती हैं, तो इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि धार्मिक अनुभूतियाँ किसी व्यक्ति को कहीं भी किसी समय में हो सकती हैं। फिर भी धार्मिक अनुभूतियाँ अनोखी प्रकार की होती हैं। यह सामान्य रूप से सबके लिए सदा संभव नहीं है। फिर भी एकाएक व्यक्ति ईश्वर के समक्ष अपने को पाता है, ऐसा धार्मिक व्यक्तियों का मानना है। इसके उदाहरण सभी धर्मों में मिलते हैं। सॉल को क्राइस्ट का दर्शन हुआ, एक्ट्स 9 संबंधी 11 में जान को अनुभूति हुई, रिवेलेशन की पुस्तक में मोहम्मद साहब को प्रथम अल्लाह का प्रथम रिवेलेशन हुआ, कुरान 96 में अर्जुन को कृष्ण का दैवी संदेश प्राप्त हुआ, गीता के प्रथम अध्याय से गुरु नानक को नदी में स्नान करते समय ईश्वर साक्षात्कार हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ संख्या 1 से गुरु नानक को ईश्वर ने यह दिखलाया कि ब्रह्मांड के पीछे एक दैवी सत्ता विद्यमान है। इस धार्मिक अनुभव के कुछ सामान्य प्रकार बताए जा सकते हैं, जैसे दैवी या ईश्वरी अनुभूति में श्रद्धायुक्त भय और आश्चर्य, द सेंस ऑफ अवे एंड वांडर होता है। व्यक्ति जब ईश्वरी अनुभूति से अभिभूत होता है तब उसमें यह स्थिति घटित होती है। उसको ऐसी स्थिति में यह पता चलता है और वह यह विवरण देता है कि ईश्वर हमसे बहुत भिन्न है। वह शक्तिमान और अद्भुत प्रकार का है। कुछ लोग ऐसा तब अनुभव करते हैं जब चर्च या मंदिर में प्रवेश करते हैं। कुछ लोग ईश्वर की महानता का अनुभव ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रकृति की छटा को देखकर करते हैं। पृष्ठ संख्या 263। इसी के साथ चमत्कार की भी चर्चा की जा सकती है। वैसे सामान्य रूप से चमत्कार की साधारण बुद्धि से या वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या तो नहीं की जा सकती, किंतु धर्म के क्षेत्र में चमत्कारों के अनेक विवरण मिलते हैं। कहा जाता है कि चमत्कार तब घटित होता है जब ईश्वर इस संसार में विशेष रूप से कुछ करता है। चमत्कार के विषय में यह भी कहा जाता है कि चमत्कार वह है जब ईश्वर कुछ करता और वह क्रिया प्रकृति के नियम के विरुद्ध होती है। ऐसे लोग जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनका कहना है कि ईश्वर चमत्कार कर सकता है और करता भी है। उदाहरण के लिए यदि कोई बीमार व्यक्ति है और ईश्वर से प्रार्थना करने पर स्वस्थ हो जाता है तो यह घटना चमत्कार के रूप में मानी जाती है। ऐसी घटनाएं सभी धर्मों में देखी जाती हैं। यह आदर और श्रद्धा का भाव तथा चमत्कारी घटनाएं साधारण धार्मिक अनुभूति के अंतर्गत घटित हुई बताई जाती हैं, किंतु धार्मिक अनुभूति का एक गहन रूप जिसमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव व्यक्त करता है और ईश्वर तथा अपने बीच तादात्म्य का अनुभव करता है, तब धार्मिक अनुभूति का यह रूप अकथनीय और रहस्यपूर्ण बताया जाता है। इसी को साधक रहस्यवाद की संज्ञा देता है। इस रहस्यवादी स्थिति को साधक आध्यात्मिक विधि या साधन के द्वारा प्राप्त करता है। जैसे ध्यान या समाधि की स्थिति में साधक या व्यक्ति ईश्वर के साथ एकाकारता की अनुभूति करता है। यहाँ धार्मिक अनुभव की व्यापकता की चर्चा आवश्यक है। कुछ विचारकों ने धार्मिक अनुभव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म निरीश्वरवादी है, फिर भी उसमें जो धार्मिक अनुभूति होती है वह रहस्यात्मक ढंग से होती है। बौद्ध धर्म में साधक शून्य या निर्वाण की जो अनुभूति करता है वह धार्मिक और रहस्यात्मक होती है। इस अर्थ में धार्मिक अनुभव व्यापक रूप का है। धर्म का विषय या ऑब्जेक्ट यदि ईश्वर नहीं है तो रहस्यात्मक स्थिति है और यह रहस्यात्मक स्थिति पवित्र भावना प्रधान तथा अकथनीय रूप की होती है जो धार्मिक ही कही जाएगी। अतः धार्मिक अनुभूति में ईश्वरीय अनुभूति तथा रहस्यवादी अनुभूति दोनों हो सकती है। यह नहीं कहा जा सकता कि धार्मिक अनुभूति किसी धर्म विशेष से ही संबंधित है। धार्मिक अनुभूति की इस व्यापकता को देखते हुए किसी विशिष्ट धर्म या रहस्यात्मक अनुभूति से जुड़ी अनुभूति को धार्मिक अनुभूति की संज्ञा दी जा सकती है। ऐसी धार्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति में कठिनाई होती है, ऐसा ही धार्मिक अनुभवकर्ता कहते हैं। इस विषय पर विचार कर लेना आवश्यक है। अब शीर्षक है धार्मिक अनुभव की अभिव्यक्ति में कठिनाई। प्रश्न यह उठता है कि धार्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति इतनी कठिन क्यों है कि उसे अद्भुत रहस्यमय कहना पड़े। क्या कारण है कि इन अनुभवों को हम साधारण भाषा में नहीं समझ पाते अथवा इन शब्दों की व्याख्याएं समय समय पर संप्रदायों के माध्यम से अलग अलग ढंगों से होती रहती हैं, जो विवाद खड़ा कर देती है। जिन मनीषियों ने सत्य का अनुभव अर्थात धार्मिक अनुभूति के विषय या ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस को प्राप्त किया है, उन्होंने इस कठिनाई को भी बताने का प्रयास किया है। श्री रामकृष्ण एक कथा के माध्यम से इस धार्मिक या आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की कठिनाई के विषय में कहते हैं। एक अंधे आदमी को एक व्यक्ति ने खीर परोसा। उस अंधे आदमी ने खीर चखा और पूछा कि खीर किस रंग की होती है। परोसने वाले ने अंधे आदमी से कहा, खीर सफ़ेद होती है। अंधे ने पूछा, सफ़ेद क्या होता है। अब परोसने वाले के सामने कठिनाई आई। अब अंधे को सफ़ेद कैसे समझाएं? उसने कहा, सफ़ेद रंग बगुले में होता है। अंधे ने पूछा, बगुला क्या होता है। तब उसने अपने हाथों को तिरछा करके अंधे के हाथ को लेकर उस पर फेरा और कहा कि बगुला इस तिरछे हाथ की तरह होता है। अंधा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि खीर तिरछे हाथ की तरह होती है। पृष्ठ संख्या 264। यही कठिनाई उन सभी ऋषियों और मनीषियों की है जिन्हें सत्य का अनुभव हुआ है और उसे अव्यक्त करना पड़ा। अव्यक्ति के कारण अर्थ से अनर्थ हो गया, संप्रदाय बने, विभिन्न धर्म बने और हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से व्याख्या करने लगा। प्रश्न यह उठता है कि जिन ऋषियों को सत्य अनुभूति हुई, उन्हें उसे अव्यक्त करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसका उत्तर है कि जिन्होंने सत्य की अनुभूति को, उन्हें जिस आनंद की प्राप्ति हुई, उसे बांटना उनकी मजबूरी थी। हम अपने साधारण जीवन के अनुभवों से यह जानते हैं कि जब हम आनंद या सुख के क्षण में होते हैं तो हम उसे बांटना चाहते हैं, यद्यपि वह भौतिक जगत से प्राप्त आनंद है। दुख तो हमें सिकोड़ता है। दुख में हम अकेले होना चाहते हैं। दुख जब घनीभूत होता है तो आत्महत्या करने का विचार होता है कि हम बिल्कुल ही न बचें, किंतु हर्ष के क्षणों में हम अपनी खुशी फैलाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। इसी प्रकार ऋषियों ने जिस अलौकिक आनंद को सत्य की अनुभूति के माध्यम से प्राप्त किया है, उसे बांटना उनकी मजबूरी उसी प्रकार की है जैसे बादल की मजबूरी जल वृष्टि की है। आनंद अव्यक्त होगा ही, परंतु अव्यक्ति देश काल भाषा के कारण अलग अलग रूपों की होगी। पश्चिम के विचारक विटगेन्स्टीन ने कहा है कि जो नहीं कहा जा सके उसे नहीं कहना चाहिए। विटगेन्स्टीन कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वह मात्र विचारक थे, परंतु उनके इस कथन में सत्य है। चूंकि सत्य की अनुभूति अलग अलग ढंग से अव्यक्त की गई, अतः उसका यह दुष्परिणाम हुआ कि कोई भी व्यक्ति उसे स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं कर सका। फलस्वरूप धर्मों में विवाद संघर्ष हुए और युद्ध भी हुए। विटगेन्स्टीन का यह मानना है कि यदि धार्मिक अनुभूति को अव्यक्त नहीं किया जा सकता या उसमें कठिनाइयां हैं तो उसे न कहना ही ठीक है, जिससे भ्रांति न पैदा हो। परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि जिन ऋषियों को सत्य की अनुभूति हुई है उसे अव्यक्त करना ही पड़ेगा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि धार्मिक अव्यक्तियां देश, काल, संस्कृति की विभिन्नताओं के कारण अलग अलग ढंग से की गई हैं, इसलिए उनमें समानता नहीं है। कबीर जुलाहे थे, अतः उनकी अव्यक्तियां झीनी झीनी बिनी चदरिया अथवा ज्यों की त्यों धर दिन ही चदरिया के माध्यम से हुई। जीसस बढ़ई के लड़के थे, उनकी अव्यक्ति तथा बुद्ध और महावीर की अव्यक्ति में अंतर है। मीरा की अव्यक्ति नृत्य के रूप में हुई। पद घुंघरू बाध मीरा नाची रे। सत्य की अव्यक्ति अनेक ऋषियों ने मौन के रूप में भी की है। रमण महर्षि मेहर बाबा मौन रहे। मौनम सम्मति लक्षणम। अब अगला शीर्षक है भारतीय तथा पाश्चात्य जगत में धार्मिक अनुभूति का स्वरूप विषय। यदि भारतीय तथा पाश्चात्य जगत के ऋषियों तथा मुनियों द्वारा प्राप्त धार्मिक अनुभूतियों का विवरण और वर्गीकरण करना चाहें तो धार्मिक अनुभूति के स्वरूप तथा विषय का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 265। बिंदु पहला है मैं और तुम, आई एंड दो। मार्टिन गुबर यहूदी विचारक थे। उन्होंने भगवान और भक्त को तू और मैं की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक अनुभव की पराकाष्ठा मैं और तू में प्रकट होती है। यह प्रेम का संवाद है जो भक्त और भगवान के बीच घटता है। भक्त अपनी भाव दशा में भगवान से उसी प्रकार एक हो जाता है जैसे प्रेम के क्षणों में पुरुष और स्त्री। अनेक यहूदी फकीर तथा सूफी संत इसी भाव दशा में सत्य को अव्यक्त करते हैं। सूफी परमात्मा का प्रेमिका के रूप में वर्णन करते हैं। मीरा, कबीर, जुनैद, जो कि सूफी हिंदू मुसलमान या बाल सेम हसीद फकीर यहूदी और ईसाई मिलकर इस प्रकार भक्त भगवान प्रेमी प्रेमिका आदि के माध्यम से धार्मिक अनुभूतियों को अव्यक्ति का यह ढंग है। यह द्वैतवाद होते हुए भी अर्थात मैं व तुम होते हुए भी एकत्व का बोध कराता है। उपनिषद छांदोग्य इसका उदाहरण है। उपनिषद में कथा आती है अरुण के पुत्र आरुणी जो उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने अपने पुत्र श्वेत केतु को उदाहरणों के द्वारा यही समझाया है। तत्वमसी श्वेत केतु अर्थात श्वेत केतु वही तत्व तुम स्वयं हो। एक उदाहरण यह है कि वट वृक्ष का जो अणुरूप है तदनुरूप ही यह सब सूक्ष्म जगत है, वही सत्य है। और हे श्वेत केतु वही तत्व तुम स्वयं हो। सूक्ष्म भाव से संपन्न आत्म तत्व से परिपूर्ण यह जगत है, यह सत्य है। इसी तरह तुम भी सत्य तत्व से पूर्ण हो, अर्थात तत्वमसी श्वेत केतु। अब बिंदु दूसरा है तू या दो। आध्यात्मिक अभ्यक्ति का दूसरा माध्यम प्रकट हुआ, जहां भक्त मिट गया और केवल भगवान शेष रहा। इस अभ्यक्ति में बूंद का सागर में मिल जाना, अनन्य हो जाना जैसी अभ्यक्तियां हैं। सूफी संत जलालुद्दीन रूमी, महर्षि कश्यप आदि संतों ने कहा है कि सत्य की अनुभूति के क्षणों में मैं नहीं बचता, सीमा खो जाती है और अंत में मात्र असीम बचता है। उस असीम में कोई अंतर नहीं पड़ता, जैसे सागर में नदियां खो जाएं, किंतु सागर वैसा का वैसा ही रहता है। ईशावास्योपनिषद के अनुसार पूर्ण मदह पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकलने और मिलने पर पूर्ण ही शेष रहता है। यह अव्यक्ति के मैं और तू में केवल तू शेष रहता है। बुवर की अव्यक्ति मैं और तू का द्वैत समाप्त हो जाता है, सिर्फ तू शेष रह जाता है। अब बिंदु तीसरा है मैं या आई की अव्यक्ति। पाश्चात्य और पूरब के धार्मिक अनुभूति के संतों में एक तीसरे प्रकार की अव्यक्ति मैं के रूप में है। इसमें वादरायण वेदांत या शंकराचार्य, जैन, मंसूर, सूफी संत आदि की गणना की जाती है। इस प्रकार की धार्मिक अनुभूति में सिर्फ मैं शेष बसता है। अहम ब्रह्मास्मि उसी की उद्घोषणा है। मंसूर ने अनहलक या मैं परमात्मा हूँ की उद्घोषणा की। इसके कारण मुसलमानों ने इन्हें काट डाला। ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट ने तो ईश्वर का राज्य अपने भीतर बताया। तू में एक दूरी है, मैं आत्म केंद्रित है, परमात्मा मेरे भीतर प्रकट हुआ है, परमात्मा बाहर नहीं है। इसीलिए क्राइस्ट ने कहा किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। बिंदु चौथा है न मैं न तू। गौतम बुद्ध ने कहा न मैं न तू शून्य है। उनके अनुसार जब तक मैं है तब तक तू है। उनकी अव्यक्ति उपनिषदों की नेति नेति से मेल खाती है। पृष्ठ संख्या 266। बुद्ध के अनुसार मैं की भी सीमा है और तू की भी सीमा है, दोनों में द्वैत है। सत्य की अनुभूति विचार शून्यता की अवस्था में होती है, जहाँ कुछ भी नहीं बसता, वह अनिर्वचनीय अव्याख्याय है। जैन परंपरा बोध धर्म रिंझाई या जैन संत आदि शून्यवाद की परंपरा में आते हैं। नागार्जुन इसी शून्य को लेकर शून्यवाद के व्याख्याता के रूप में हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन नागार्जुन के शून्य के विषय में कहते हैं नागार्जुन एक उच्चतर यथार्थता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, यद्यपि उपनिषदों के ही समान वे उसे अनुभव का पदार्थ नहीं मानते। बुद्ध ने इसे परमार्थ कहा है, निरपेक्ष सत्य कहा है, जिसका वाणी के द्वारा प्रचार नहीं किया जा सकता। शून्यता एक भावात्मक तत्व है। कुमार जीव कहते हैं, यह शून्यता ही के कारण है जो प्रत्येक वस्तु संभव हो सकती है और बिना इसके संसार में कुछ भी संभव नहीं है। यही सब का आधार है। बिंदु पांचवा है, दोनों है दोनों नहीं है। सांडिल्य आदि संतों ने कहा कि पूर्ण सत्य अपने में विरोधाभासों को लिए हुए होता है। यदि हम कहें कि ईश्वर प्रकाश है तो हमने दूसरा पक्ष जो अंधकार है को छोड़ दिया, यह अर्ध सत्य हुआ। उनके अनुसार ईश्वर प्रकाश और अंधकार दोनों है। जीवन मृत्यु प्रेम घृणा मित्र शत्रु शुभ समृद्धि दरिद्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ईश्वर एकांगी नहीं हो सकता। जिन लोगों ने सत्य की अनुभूति के एक पहलू को अव्यक्त किया उन्होंने सत्य की हिंसा कर दी। सत्य विरोधाभासी है, सत्य अतर्क्य है, यह विज्ञान भी है काव्य भी है, इसमें चुनाव नहीं हो सकता। महावीर का स्यादवाद सारी संभावनाओं को स्वीकार करता है। ऊपर लिखे हुए प्रथम चार अव्यक्तियों के कारण विभिन्न धर्म पैदा हुए, किंतु सांडिल्य की परंपरा में कोई धर्म विकसित नहीं हो सका, क्योंकि मनुष्य अस्पष्ट रूप से जानना चाहता है कि सत्य की अव्यक्ति विकल्पों के रूप में हो सके। जहाँ चुनाव की स्वतंत्रता हो, या तो प्रकाश हो या अंधकार हो। हिंदुओं ने संध्या शब्द का उपयोग किया। संध्या आलोक आदि शब्द प्रकाश और अंधकार के बीच की स्थिति को दर्शाते हैं। इस प्रकार ऊपर के पांच प्रकारों में धार्मिक अनुभूतियों को ऋषियों या धार्मिक पुरुषों ने अपनी अनुभूतियों को अव्यक्त किया है। यहाँ आवश्यक है कि इन अव्यक्तियों की एक विवेचना प्रस्तुत की जाए। अब अगला शीर्षक है धार्मिक अनुभूतियों की अव्यक्ति एक विवेचना। भूमिका, धर्म क्या है, धार्मिक अनुभव की प्रकृति क्या है, यह एक अस्तित्वगत प्रश्न है जिससे मनुष्य सदा से घिरा हुआ है। प्रकृति ने जीवन को अनेक रूपों में प्रकट किया है। चट्टान से मनुष्य तक की यात्रा में प्रकृति ने चेतना के अनेक आयाम विकसित किए। एक चट्टान हमें मृत प्राय प्रतीत होती है। भौतिकविद इसे पदार्थ की संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि पदार्थ चेतना शून्य है, अतः मृत प्राय है। परंतु विज्ञान की आधुनिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चट्टान संज्ञाहीन नहीं है, उसमें असीम ऊर्जा छिपी है जिसे हम आणविक ऊर्जा कहते हैं। जीवन के विकास में चट्टान विकसित होकर वनस्पति पशु पक्षी तथा मनुष्य के तल पर चेतना की विभिन्न अवस्थाओं में पहुंच सके हैं। पृष्ठ संख्या 267। मनुष्य के तल पर चेतना पशु एवं वनस्पति जगत से विकसित हुई, जिसके कारण बुद्धि विचार शब्द भाषा आदि का विकास हुआ। परंतु मनुष्य योनि में विकास की अंतिम परिणति प्रकृति द्वारा संपन्न नहीं हो सकती, तथा मनुष्य को चेतना की ऊंचाइयों पर पहुँचने की स्वतंत्रता है। जो अन्य योनियों में संभव नहीं है। अनेक मनुष्यों ने चेतना के शिखर पर यात्रा की है, जिन्हें हम अवतार, बुद्ध, पुरुष आदि के नाम से पूजते हैं। ऐसे मनुष्यों ने, जिन्हें ज्ञान उपलब्ध हो गया, विभिन्न प्रकार से अव्यक्तियों के माध्यम से पृथक पृथक ढंग से मनुष्य मात्र को ज्ञान देने का प्रयास किया, जिससे वह भी चेतना की उन ऊंचाइयों पर पहुंच सके। परंतु इन अव्यक्तियों को साधारण मनुष्य को ग्राह्य करना संभव न हो सका। इसी कारण इन संबुद्ध पुरुषों के इर्द गिर्द संप्रदाय निर्मित होने लगे, जहाँ पंडित, पुरोहित, मुल्ला और मौलवी ने कर्मकांड का जंगल खड़ा किया तथा धार्मिक अनुवाद का वातावरण पैदा कर राजनीति करने लगे। इन लोगों ने संबुद्ध व्यक्तियों के धार्मिक अनुभवों को ठीक से नहीं समझा, जिसके कारण मनुष्यता रुग्ण होने लगी। कई लोगों ने धार्मिक अनुभूतियों को अव्यक्त करने की कठिनाई को अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा है कि साधारण मनुष्य इस प्रकार का है, जो गुफा में बंदी की तरह जन्म से पड़ा रहता है। उसके हाथ और पैरों में बेड़ियां हैं, वह अपनी गर्दन भी घुमाकर नहीं देख सकता, परंतु उसे गुफा के बाहर जाते हुए लोगों की परछाइयां दिखाई पड़ती हैं। वह इन परछाइयों को समझ नहीं पाता। उसे यह पता नहीं है कि गुफा के बाहर भी जीवन है, जहां लोग बिना बेड़ियों के खुले आकाश के नीचे उन्मुक्त विचरण कर सकते हैं। यह उदाहरण प्लेटो ने साधारण मनुष्य की स्थिति को समझाने के लिए दिया है, जो परतंत्र है और स्वतंत्रता उसके लिए मात्र एक शब्द है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। संबुद्ध व्यक्ति स्वतंत्र है, उन्होंने इन बेड़ियों को काट दिया है तथा वे अन्य मनुष्यों को भी अपनी बेड़ियों से मुक्त होने का आह्वान किया है। इस प्रकार के उदाहरण अन्यत्र भी दिए गए हैं, जैसे एक कुएं के अंदर पड़ा हुआ मेंढक, जो जीवन को इतना ही जान पाता है जितना कुएं का दायरा है। उसे पता नहीं है कि कुएं के बाहर का जगत अनंत संभावनाएं लिए हैं, जहां उन्मुक्त आकाश है, जिन्हें जीवन में खालीपन दिखाई पड़ता है और वे दुख में जी रहे हैं। वे एक नई यात्रा पर निकलते हैं, जिसे हम धर्म की यात्रा कह सकते हैं, और जो इस यात्रा के दुख के मूल कारणों को समझ लेते हैं, उन्हें हम संबुद्ध व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन रूपांतरित हो जाता है तथा उनकी स्थिति को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे मोक्ष, निर्वाण, संबुद्ध, जागृत, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वाला, अंधे से आँख वाला आदि। पृष्ठ संख्या 268। युंग ने इसे अखंड या इंडिविजुएशन प्रक्रिया की संज्ञा दी है। युंग के अनुसार साधारण मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से विखंडित होता है। धर्म की यात्रा में वह रूपांतरित होकर अखंड हो जाता है। युंग एक मनोवैज्ञानिक था। फ्रायड, एडलर एवं युंग ने मनुष्य के मनोविज्ञान का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया। उन्होंने पहली बार यह स्थापित किया कि मनुष्य का अचेतन उसकी चेतन तल की अपेक्षा बहुत बड़ा है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि मनुष्य के सभी क्रियाकलाप मनुष्य के अचेतन मन से प्रभावित होते हैं, परंतु धर्म की यात्रा में इस अचेतन को जो लोग रूपांतरित कर लेते हैं तथा पूर्ण चेतना को प्राप्त कर लेते हैं, वे ही संबुद्ध हो सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि मनुष्य उस असीम का एक अंश है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं और जो आकाश तथा समय की सीमा में आबद्ध है। चेतना को इन सीमाओं के कारण एक भ्रम पैदा होता है कि जो दृश्य जगत है वह ही सत्य है। वास्तविकता यह है कि दृश्य जगत का ज्ञान हमारी इंद्रियों की सीमा के कारण सीमित होता है। अदृश्य जगत का विस्तार दृश्य जगत से बहुत अधिक है। अदृश्य जगत का ज्ञान इंद्रियों से नहीं किया जा सकता। अतः पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जब दृष्टिगोचर जगत के परे अदृश्य जगत में प्रवेश हो सके। जिन्होंने सत्य की अनुभूति की है उनका कहना है कि मनुष्य जब तक अज्ञात में प्रवेश न करे तब तक सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। अज्ञात का जगत विराट है, ज्ञात का जगत हमारी इंद्रियों मन विचार की सीमा में आबद्ध है। जीवन अज्ञात से उसी प्रकार आता है जैसे जमीन के अंदर अंधेरे में दबा हुआ बीज होता है जो विशाल वृक्ष की संभावना लिए होता है। जब बीज वृक्ष बनता है तब उसकी शाखाएं, पत्ते, फूल फल दृश्य जगत की वस्तु हो जाती है, परंतु वृक्ष का जीवन अंधकार में दबे हुए बीज के प्रस्फुटन से होता है जो दृष्टिगोचर नहीं है। अतः जिन्होंने सत्य की अनुभूति की है वे अदृश्य जगत की बातें करते हैं जो साधारण मनुष्य के लिए ग्राह्य नहीं होता। यह तब तक संभव नहीं है जब तक हम दृश्य जगत के परे अदृश्य जगत में प्रवेश न कर सकें और हमारी वह अनुभूति न बन सके। संबुद्ध व्यक्ति उस मेढक की भांति है जो कुएं के बाहर आ गया है और जिसने विराट अस्तित्व को आत्मसात कर लिया है। ऐसे व्यक्तियों की अभिव्यक्तियाँ अलग अलग होती हैं जो समय, स्थान, भाषा शैली के दृष्टिकोण से भिन्न हो जाती हैं। सत्य का अनुभव तो सभी महापुरुषों को एक समान होता है, परंतु अभिव्यक्तियाँ अलग अलग होती हैं। इन अभिव्यक्तियों की भिन्नता के कारण ही संप्रदाय पैदा हो जाते हैं जो अपने अपने तरीके से उतना ही सत्य मानते हैं जो उनके संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के अनुरूप हो। वे यह समझने में असमर्थ हैं कि अनुभूत के तल पर सभी प्रवर्तक एक समान हैं। भेद अव्यक्तियों के कारण है। ईसाई धर्म जब बाइबिल को होली बाइबिल की संज्ञा देता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि पुस्तक पवित्र है, बल्कि पवित्रता उस पुस्तक के पढ़ने से जो रूपांतरण संभव है उसके कारण है। बाइबिल के अंदर अनेक घटनाओं का उद्धरण है। जो विज्ञान अथवा इतिहास की पृष्ठभूमि में विवादास्पद है। ऐसी घटनाओं के कारण अनेक भ्रांतियाँ हुई हैं जिसका सत्य के साक्षात्कार से कोई संबंध नहीं है। पृथ्वी का जन्म कब हुआ? पृथ्वी गोल या चपटी है? ऐसे उद्धरणों से सत्य का कोई लेना देना नहीं है। पृष्ठ संख्या 269। परंतु ऐसी ही बातें विवाद का विषय बन जाती हैं। शास्त्र इसलिए नहीं लिखे जाते कि उनसे ऐतिहासिक अथवा वैज्ञानिक सूचनाएं प्राप्त हों। शास्त्र की सार्थकता तभी है जब वह जीवन को रूपांतरित कर सके। यदि बाइबिल, कुरान अथवा गीता व्यक्ति के रूपांतरण में सहायक नहीं है तो यह इसलिए है कि उससे वह ज्ञान निकाला नहीं जा सका जो जीवन के रूपांतरण में सहयोगी है। बहुधा शास्त्रों में ऐसे शब्द लिख दिए जाते हैं जो शाब्दिक रूप से निरर्थक हैं, परंतु उनमें छिपा हुआ भाव सार गर्भित है। यदि ईसा मसीह को कुंवारी मरियम से पैदा माना गया है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे बिना माता पिता के संयोग से पैदा हो गए। इसका कुल अर्थ इतना है कि कुंवारी मरियम इतनी निष्पाप निष्कलुष हैं कि उन्हीं के माध्यम से ईसा जैसे व्यक्ति का जन्म हो सकता है। चीन के प्रसिद्ध संत च्वांग सू ने कहा है कि शब्द तभी तक सार्थक हैं जब तक उनसे कोई अर्थ निकलता है। एक बार उनका अर्थ निकल गया तो शब्दों को भूल जाना चाहिए। शब्द उस प्रकार की उंगली है जो चाँद की तरफ इशारा करती है। हमें चाँद को देखना है न कि उस उंगली को जो मात्र इंगित करती है। परंतु बहुधा यह भूल जाती है कि हम संतों की उंगलियां पकड़कर बैठ जाते हैं और उससे वंचित रह जाते हैं। जहां वह उंगली इशारा कर रही है, बुद्ध ने कहा है कि नदी पार करने के बाद उस नौका को छोड़ देना चाहिए जिसने हमारी यात्रा पूरी कराई। परंतु लोग नौका को अपने सिर पर रखकर ढोते रहते हैं। नागार्जुन ने कहा है कि शास्त्र एक औषधि की भांति है। रोग ठीक हो जाने के बाद औषधि लेते रहना मूर्खता है। शास्त्रों के शब्द नहीं पकड़ना चाहिए। लोकोक्ति में हम कहते हैं कि सूरज अस्त हो रहा है। वास्तविकता यह है कि सूरज न तो उगता है न अस्त होता है। परंतु हम इस पर विवाद कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा हृदय जला जा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हृदय में वास्तविक आग लगी हुई है। इसी प्रकार शास्त्रों में भी अनेकों ऐसे उद्धरण आते हैं जहां भावार्थ के बजाय हम शब्दों को पकड़ लेते हैं जिससे भ्रांति हो जाती है। अगला शीर्षक है धार्मिक अनुभूति विषय। परमात्मा या ईश्वर क्या है? धार्मिक अनुभूति का विषय ईश्वर, परम सत्ता, दैवी सत्ता या अलौकिक सत्ता जैसे अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। यह विषय भी बड़ा विवादास्पद बना दिया गया है। यह सत्ता क्या है? इसके उत्तर में अनेक वाद या मत खड़े हो गए हैं, जैसे ईश्वरवाद, नास्तिकवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, निरपेक्षवाद, संदेहवाद, अज्ञेयवाद आदि। किंतु वास्तविकता यह है कि ईश्वर सैद्धांतिक बहस के अलावा सब कुछ है। परमात्मा को अनेक प्रकार से अव्यक्त किया गया है। परमात्मा हमारे जीवन की आशा और साहस का प्रतीक है। परमात्मा ने सृष्टि को अपने ही रूप में निर्मित किया, परंतु क्या वह सत्य है? ऐसा लगता है कि मनुष्य ने परमात्मा को अपने रूप में बनाया। परमात्मा मनुष्य के सभी गुण धर्म लिए हुए हैं। एंथ्रोपोमोर्फिज्म अर्थात मानव अपने ही गुणों को ईश्वर पर आरोपित करता है। वह या ईश्वर उसी प्रकार प्रसन्न अथवा क्रोधित होता है या ईर्ष्या से भरा होता है जैसे मनुष्य। वह हमारे हर कार्य का लेखा जोखा रखता है। परमात्मा के अंदर जादुई शक्ति की परिकल्पना की गई है। वह एक पुलिस की भांति है, जासूस है, न्यायाधीश है, सजा देने का अधिकार रखता है। पृष्ठ संख्या 270। ऐसी समस्त धारणाएं बचकानी है। छोटे बच्चे को हम खिलौना दे देते हैं, वे उसमें उलझे रहते हैं। उसी प्रकार परमात्मा एक खिलौने की भांति है, जिसे हम बचपन से संप्रदाय विशेष के अनुरूप पकड़ा देते हैं। इस प्रकार हमारी बुद्धि जीवन पर्यंत बचकानी रहती है। हम इससे मुक्त हो नहीं पाते। इन्हीं सब कारणों से नित्से को कहना पड़ा कि परमात्मा मर गया। नित्से उस परमात्मा की बात कर रहा है जो हमारी बचकानी बुद्धि पर थोप दिया गया है। परमात्मा को विभिन्न व्यक्तियों ने अपने अपने ढंग से अव्यक्त करने का प्रयास किया है। पॉल टिलिख का कहना है कि परमात्मा अस्तित्वगत है अथवा उसकी भूमि पर समस्त अस्तित्व खड़ा है। कार्ल यास्पर्स ने कहा है कि परमात्मा अपने में सभी कुछ समाहित किए हुए हैं। रुडाल्फ आटो ने कहा है परमात्मा न्यूमिनस है। न्यूमिनस का अर्थ होता है जो अव्यक्त न किया जा सके। ताओवाद में ईश्वर को दी वे कहा गया है। हिंदू उसे ब्रह्म कहते हैं अथवा सत्यम शिवम सुंदरम या सच्चिदानंद कहते हैं। बौद्ध उसे धम्म अथवा धर्माता कहते हैं या शून्यता या सचनेस जैसा है कहते हैं। इस्लाम में अलहक कहा गया है। यह सभी नाम एक ही अनुभव को अलग अलग रूप से कहने का ढंग है। यदि यह पूछा जाए कि सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो सभी धर्म कहते हैं यह शब्दों से परे है और अनुभव जन्य है। यह अनुभव की वस्तु है। सत्य हमारे दैनिक जीवन की अनुभूतियों से इतना भिन्न है कि उसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इसे थिंग न कहकर नो थिंग कहा गया है, इसीलिए इसे शून्यता कहा गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कुछ नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व और अनास्तित्व के परे है अथवा पूर्णता एवं शून्यता के परे है। इसीलिए यह रहस्य पूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारी समझ से परे है। ताओ ते चिंग या लाओत्सो में कहा गया है कि जो ताओ शब्द में प्रकट किया जा सके वह ताओ नहीं। जो ताओ को जानते हैं वे प्रकट नहीं कर सकते, और जो अव्यक्त करते हैं वे तावों को नहीं जानते। उपनिषद केनो उपनिषद में कहा गया है कि जो कहता है कि ब्रह्म ज्ञात नहीं है वही सत्य रूप में उसे जानता है, किंतु जो यह दावा करता है कि ब्रह्म को जानता हूँ वह कुछ नहीं जानता। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। इसी प्रकार सत्ता के विषय में नेति नेति भी कहा गया है। सारांश यह है कि ईश्वर अथवा धर्म की अनुभूति को अव्यक्त करना कठिन है। अव्यक्ति में संवाद होता है, जहाँ दो व्यक्तियों के बीच शब्दों का आदान प्रदान होता है। चूँकि धर्म की अनुभूति निःशब्द में होती है और उसकी अव्यक्ति शब्दों के माध्यम से होती है, अतः अव्यक्ति गलत हो जाती है। ईश्वर की अनुभूति को मौन में ही संप्रेषित किया जा सकता है। उसे मिलन या घनिष्ठता या कम्युनियन कहा जाता है, जो संप्रेषण या कम्युनिकेशन से भिन्न है। यह ऐसा ही है जैसे दो प्रेमी मौन में संवाद करते हैं, शब्द निकलते ही वह विवाद का विषय बन जाता है और तिरोहित हो जाता है। इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा में उपनिषद शब्द अविष्कृत हुआ। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। पृष्ठ संख्या 271। इस बैठने में मौन में संवाद घटित होता है। उपवास का भी यही अर्थ होता है। उपवास का अर्थ है अपने निकट बैठना। यह सब मौन में घटित होता है। धार्मिक अनुभव का संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। संस्कार हमें संप्रदाय के अनुरूप अपनी मान्यताओं में ढाल देते हैं। एक व्यक्ति शाकाहारी होता है, दूसरा मांसाहारी। इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। यह संस्कारगत है। देश काल परिस्थितियों के अनुरूप संस्कार निर्मित होते हैं। धर्म या अध्यात्म देश काल परिस्थितियों से परे की चीज है।